स्टेयर्स कर रहा हूँ कि फिर वही कि भाई कोई नया आदमी हो तो वो आदमी कुछ और ना सोचे। हमारी जिंदगी में पढ़ने मजलिस पढ़ने से हदफ खिताबत नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मुझे खिताबत आती भी नहीं है, लिहाजा अगर कोई दोस्त गलती से इस इंतजार में आ गया है कि कोई खतीब आया है और वो खिताबत करेगा, तो मैं पहले दिन बता देता हूँ ना मुझे खिताबत आती है ना मैं खिताबत कर पाऊंगा। तो आप मुमकिन है पूछेंगे भाई फिर आप क्या करेंगे, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मैं अहले बैत की तालीमात में से कुछ चीजों को हर रोज पिक करूंगा और उसे आपके सामने सादा और सलीस उर्दू में बोल दूंगा। ये हमारा काम होगा और इससे हमारा हदफ क्या होगा। अब यहाँ हदफ की बात है, हदफ ये होगा कि जिस मोहब्बत से आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, अहले बैत की जिस अकीदत से आप आए हैं, आपकी अकीदत आपकी मोहब्बत और आपकी कुर्बत में और ज्यादा इजाफा हो जाए। ये हमारा आप भी अहले बैत से और नजदीक हो सकें, हम भी अहले बैत से और नजदीक हो सकें, आप भी खुदा के दीन की खिदमत कर सकें और हम भी खुदा के दीन की खिदमत कर सकें। अब इसमें खिताबत आई या खिताबत नहीं आई इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा असली काम दीन सीखना है और दीन सिखाना है। और आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा जिसकी वजह मैं बाद में अर्ज कर दूंगा कि आप दीन सीखने आए और दीन पर अमल करने आए, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपके हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में बड़े दर्जे नसीब फरमाएगा। मोहम्मद ऐसे तो तीन पॉइंट्स भी काफी हैं, लेकिन एक चौथा पॉइंट वो भी इजाफा कर। बहुत सारे मेरे जैसे बोलने वाले ऐसी कौमों को सुनाने में वक्त लगाते हैं जो यहां नहीं बैठी और उन्होंने सुनना भी नहीं। बहुत सारी कौमें हैं मुसलमान जो न मजलिस में आते हैं न मजलिस सुनते हैं, और हम लोग सारा वक्त लगा देते हैं उनको सुनाने में। मैं जब मजलिस में पढ़ना शुरू की तो मैंने सोचा कि भाई मैं उसको नहीं सुनाऊंगा जो यहाँ पे है नहीं, बल्कि मैं उसको सुनाऊंगा जो यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका नुकसान क्या होता था, हम लोग उनको सुनाते रहते थे जो यहाँ बैठे नहीं है, फायदा या नुकसान पता नहीं उनको हुआ या नहीं हुआ, हमारी कौम को एक नुकसान हो गया। वो एक जो काम की इनको बातें पता चलनी चाहिए थी वो इससे महरूम रहे। तो अब हमने सोचा कि नहीं वो दूसरी कौमों को कोई प्लेटफॉर्म होगा वहां पे जाके सुना लिया करेंगे, यहाँ पे हम अपने दोस्तों को सुनाएंगे जो यहाँ पर अहले बैत की तालीमात लेने के लिए आए हैं उनको सुनाएंगे और ऐसी बातें सुनाएं जो उनकी जिंदगी में काम आती रहे इंशाअल्लाह, और जैसे अर्ज किया अहले बैत के रास्ते पर चलने में उनको नुसरत मिलती रहे। एक बार फिर वक्त के इमाम के हुजूर जिनके हम सब मुंतजर हैं और उनकी नुसरत की ख्वाहिश हमारे दिलों के अंदर है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हमारा मौजू क्या है, मैं चंद जुमलात आपकी खिदमत में मौजू के हवाले से भी अर्ज करूंगा और आज जो बाकी वक्त है उसके अंदर उस मौजू को थोड़ा सा इब्तदा हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार इंशाअल्लाह नुसरत फरमाएगा, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मुकदमे में आपकी खिदमत में अर्ज हुआ वो ये कि खुदा ने मुसाब ने दीन तदरीजन भेजा, भेजता था फिर कुछ अरसे के बाद वो दीन कहता था कि ये दीन ऑब्सोलीट हो गया, अब एक नया, और जो नया होता था उसकी कंटिन्यूएशन में होता था। फरमाया कुरान करीम ने इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन जो भी खुदा ने भेजा इस्लाम भेजा, नया इस माना में कि उसमें और इजाफा होता था। लेकिन ये जो खुदा ने मुसाब ने काम किया कि एक नबी को भेजा, कुछ अरसे के बाद वो नबी एक नए नबी की बिशारत देते थे, फिर नए नबी आते थे, क्या पिछले अंबिया के मानने वाले वो दीन छोड़ देते थे? नहीं छोड़ते। मसलन हमारे पास जो शरीयतें मौजूद हैं उसमें जिस जो इस वक्त भी उसी नाम से मौजूद हैं, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाए, तकरीबन समझ लीजिए 3000 साल से कुछ ज्यादा हो गए उनको आए, तकरीबन 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक खत्म हो गई। और कहा कि अब जो जिंदगी गुजारे अल्लाह के दीन पर तो वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल कर रहे हैं। क्या लोगों ने खत्म कर दिया? नहीं, लोग चलते रहे। अब तक चल रहे हैं क्या? अब तक चल रहे हैं। कितना अरसा हो गया उस शरीयत के दौर को खत्म हुए? 2000 साल। अभी तक चल रहे हैं। किस तरह चल रहे हैं? अल्लाह की ताईद नहीं है इस पर, फिर भी चल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं जो चलते रहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए 2000 साल पहले, 1400 साल पहले हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। उन्होंने बताया कि भाई वो दीन खत्म हो गया, अब ये दीन है। क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। किस तरह चल रहे हैं? जबकि अल्लाह के दीन ने उस दीन की ताईद खत्म की है, कहा कि भाई अगली शरीयत है, इसके ऊपर अमल करो, लेकिन वो लोग चल रहे हैं। तो एक बहुत खतरनाक सवाल आता है हर दीनदार के सामने, वो ये कि ये क्या गारंटी है कि जो मेरे हाथ में दीन है ये वही है जिसपे खुदा खुश है? बड़ा अजीब सवाल है। हर दीन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके नतीजे में जो असली तालीमात हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। माशरे में लोगों को एहसास नहीं हो पाता, वो अपना काम करते रहते हैं। तो हमारे और आपके पास कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें और आपको ये पता चले कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। खुदा ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमें कहा गया था हम उसके अंदर कोई कमी कर बैठे, कोई कोताही कर बैठे। और कमी कोताही करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सोसाइटी की आदत से दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, बड़ी अजीब मिसाल है। जब कोई माशरा दीन की असल को छोड़ देता है तब भी दीन से फायदा उठाना चाहता है। कुफारे मक्का की मिसाल, कुफारे मक्का किस दीन के मानने वाले थे? जाहिरी तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन दीन हनीफ है, उसके अंदर बुत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। कुफारे मक्का बुत परस्त थे, 300 से ज्यादा बुत उन्होंने खाने काबा के अंदर रखे हुए। इन बुतों का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मौजूद थे, फायदा भी उठा रहे थे उनसे, और ऐसी ऐसी फजीलतें अपने लिए कायल थे कि अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा तो मेरा मुझे यकीन है कि आप कहेंगे भाई इस फजीलत को, इस बेवकूफी को कौन मानता होगा। उस जमाने में सब मानते थे। कुफारे मक्का ने जो खाने काबा के बराबर में रह रहे थे अपने लिए एक फजीलत बनाई, और फजीलत ये बनाई थी कि हम जो मक्का के बराबर में रहते हैं जब तक कोई हमारा कपड़ा पहन के खाने काबा पे ना जाए उसका तवाफ कबूल नहीं होगा। बड़ा अजीब काम किया भाई। ये खाने काबा किसका है? ये अल्लाह का है। बनाया किसने? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को दावत दी थी कि तवाफ करें, बिल्कुल दावत दी थी। कुरान ने दावत दी थी, बिल्कुल दावत दी थी। कोई कैद लगाई थी कि कपड़ा कहां का होगा? नहीं। इन्होंने कैसे लगा दी? उन्होंने कैद लगाई, उन्होंने कहा कि भाई कपड़ा आपको खाने काबा के अतराफ में जो मार्केट में रह रहे हैं लोग, बाजार में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, इनका लेना पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर फर्ज करें अगर कोई यमन से आया है, यमन का कपड़ा बहुत मशहूर था उस जमाने में, आपने जानते हैं बुर्दे यमन, तो कोई यमन से आया उसके पास कोई कपड़ा है और वो अपने साफ सुथरे नए कपड़े लेकर आया खाने काबा में तवाफ करने के लिए, तो कहते थे तुम इस कपड़े में तवाफ नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? कहा तुम्हें मक्का के बाजार से नया कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तवाफ करने के लिए मक्के के बाजार से कपड़े खरीदूं नए, तो मैं क्या करूं? तुम कहते थे फिर तुम्हें किसी अहले मक्का के पुराने कपड़े आरियतन लेकर उसमें तवाफ करना पड़ेगा। मक्के वालों का पुराना कपड़ा यमन वालों के नए कपड़े से ज्यादा फजीलत रखता, तुम्हें उनके कपड़े लेकर तवाफ करना पड़ेगा। अब बहुत माजर के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, शायद कोई पसंद ना करे। यहां तक था कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो बगैर कपड़ों के तवाफ करना पड़ेगा, जी था यहां तक था। अच्छा, ये मक्के वालों ने अपनी फजीलत कैसे बनाई थी? कोई दलील थी? لیکن کوئی دلیل نہیں تھی، یقین آنے کی نہیں تھی، قطعاً کوئی دلیل نہیں تھی. کیا بنایا؟ کہا ہم مکے کے اطراف میں رہتے ہیں، اس وجہ سے ہماری فضیلت ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین تھا اس میں ایک خدا تھا، اس میں بت پرستی کی مخالفت تھی، اس میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی تھی، ان میں سے کچھ تھا نہیں، ان میں سے کچھ نہیں تھا. کیا رہ گیا؟ صرف یہ رہ گیا کہ کسی نے طواف کرنا ہے تو وہ ہمارے کپڑوں میں کرے گا. یہ دین میں ایک دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، اتر آتا ہے. آیا کسی اور دین کے اندر مثال ہے؟ تقریباً ہر دین کے اندر مثال ہے. میں ادیان کے نام نہیں لینا چاہ رہا آپ کے سامنے، لیکن آپ کسی بھی شریعت کو ہاتھ لگائیں جس کے میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے تھے، ان تمام کی شریعت کے اندر آپ کو مثالیں مل جائیں. اب ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے کرنا ہوتا ہے، بہت سخت سوال ہے، وہ یہ کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس دین میں ہم وہی کر رہے ہیں جو اہل بیت اطہار نے ہم سے چاہا تھا؟ اس کی ہمیں کوئی گارنٹی پتہ چلنی چاہیے. اس کا اسکیل کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا صاحب، یہ بھی آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا چلوں کہ اگر میں کوئی روایت پڑھوں، صحیح ہے، تو اور کبھی کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی اس روایت کا ماخذ کوئی، اس کی سند تو میں دے سکتا ہوں، میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی ہمیں کوئی سند بھی تو دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے. نہ، میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سند چاہیے ہو تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی اس کی سند کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ علیہ وسلم، امام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا. روایت کے ظاہر سے لگتا ہے کہ یہ آدمی کئی دفعہ آتا ہے، کئی مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مثلا پہلی دفعہ آیا. تو آیا امام کے سامنے اور اس نے کوئی بات کہی، تو امام نے اس سے کہا کہ تم دو رکعت نماز پڑھو، دو رکعت نماز پڑھو. اس نے دو رکعت نماز پڑھی امام کے سامنے. امام نے جو جملہ کہا اس پر اس آدمی نے روایت میں لکھا ہے کہ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں آتے ہوئے، تمہیں دو رکعت نماز پڑھنی نہیں آئی، کیوں ایسا ہے؟ تمہیں دو رکعت نماز پڑھنی نہیں آئی؟ تو یہ آدمی مؤدب آدمی ہے اور اس کے اندر کوئی فضیلت ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے ہم جیسوں نے نماز سیکھی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ جب امام نے فرمایا تو انہوں نے فوراً اندازہ لگایا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا امام سے کہ مولا آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں. امام نے فرمایا میں نماز پڑھوں گا اور تم اس کو نوٹ کرو. اس کے بعد ان کی روایت ہمارے پاس موجود ہے تفصیل کے ساتھ، آداب مستحبات کے ساتھ، کہ امام کھڑے کیسے ہوئے، رکو کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، ہاتھ کہاں رکھے تھے، دیکھ کہاں رہے تھے، کمر کیسی تھی، ساری تفصیلات اس کے اندر موجود. صحیح. ارے یہ جو امام نے ان صاحب کو دو رکعت نماز پڑھنے کو کہا اور کہا کہ تمہیں نماز پڑھنی نہیں آئی ابھی تک، آپ کے خیال میں یہ جملہ صرف ایک آدمی کے اوپر ہی لگا تھا؟ آپ خود تصور فرمائیے اگر آج کے معاشرے کے لوگ امام کے سامنے کھڑے ہو کے اسی طرح نماز پڑھیں جیسے روٹین میں پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ جنہوں نے دو رکعت پڑھی ہوگی انہوں نے رکوع نہیں کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوا ہوگا. سجدہ نہیں کیا ہوگا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا ہوگا. جو کچھ ہوا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے. اچھا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ سنا ہی نہیں ہے کہ امام نے جو صحیح نماز اس کو سکھائی وہ تھی کیا. اب مثال کے طور پر ایک دو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ تھوڑا سا عمل کی بات ہے نا، شروع ہو کہیں سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور بہت ہی آسان ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی امام نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم دیکھو میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی ویسے ہی پڑھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. متواضع آدمی تھے، تواضع تھا، ادب تھا ان کے اندر. کہنے لگے کہ امام جب تشریف فرما ہوئے، انہوں نے قیام فرمایا، امام نے کھڑے ہوئے، تو تفصیل بیان کی، بہت اچھا کام کیا ان کے نصیب، ان کے اس توازو کے نتیجے میں میں نے عرض کیا کروڑوں اربوں لوگوں کو سیکھنے کو مل گیا. کہا امام جب کھڑے ہوئے تو امام نے دونوں پنجوں کو قبلے کے رخ کیا اور امام کے پنجوں اور ایڑیا کے درمیان برابر کا فاصلہ تھا. صحیح، تو زیادہ تر لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تقریباً 90% سے زیادہ لوگ ٹیڑھے کھڑے ہوں گے. میں کہا نہیں امام یوں سیدھے کھڑے ہوں، پنجے دونوں قبلے کی طرف تھے اور پنجے اور ایڑیوں کے درمیان برابر کا فاصلہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب امام کھڑے ہوئے قیام فرمایا تو انہوں نے ہاتھ سائڈ میں نہیں رکھے، انہوں نے ہاتھ سامنے رکھے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ امام نے تھوڑا سا اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا اور وہ اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں انہوں نے سجدہ کرنا تھا، اور انہوں نے جملہ استعمال کیا، کہا امام کے کھڑے ہونے سے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بندہ اپنے مالک اور اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوا. جسچر ایسا تھا، دیکھ کر یوں لگ رہا تھا. اچھا، ابھی بات کانٹینٹس پہ نہیں آئی ہے، ابھی بات انٹینشن کے اوپر نہیں آئی ہے، کنسنٹریشن کے اوپر نہیں آئی ہے، صرف فزیکل جسچر کے اوپر بات آئی ہے. اسی میں فیل ہو رہے ہیں لوگ اسی میں فیل ہو رہے ہیں جیسے کہ وہ فیل ہوئے. تو میں آپ کی جلدہ پہ عرض کروں گا کہ بھئی یہ تو وہ کام نہیں ہے جو ہم نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے حج کی طرح، یہ تو وہ کام نہیں ہے جو ہم نے مثال کے طور پر 6 مہینے میں سال بھر میں ایک دفعہ کرنا ہے. تو ہر روز کا کام ہے، اس میں یہ مشکل ہے. تو میں عرض کروں گا یہ میں کیسے سمجھوں کہ وہ جو اصلی کام ہے وہ کیا ہے. اس خاطر یہ جو 10 دن ہیں اس میں کیا عرض کروں گا، ایک ایک عمل بھی نہیں جائیں گے. ہمارا خیال یہ ہے جو ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات اس کے جو بنیادی ترین نکات ہیں انہیں پک کریں اور یہ دیکھیں کہ جو بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو کیسے امپروو کریں کہ ہم اہل بیت کی اس تعلیمات کے نزدیک آ جائیں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب اس پوائنٹ کو تھوڑا سا اور لیبریٹ کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دیکھیے بعض اوقات بات تو ہمیں پتا ہوتی ہے، صحیح پتا نہیں ہوتی، تفصیل پتا نہیں ہوتی. میں اس کی 2-3 مثالیں عرض کر سکتا ہوں اور اسی میں رہوں گا، ابھی کل میں شروع کروں گا اصلی کام. 2 مثالیں اور یہ بہت پرانی مثال ہے، کافی عرصے سے عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک شب اول قبر ہے، یعنی جب کوئی انسان مرتا ہے چاہے فزیکلی زمین میں دفن ہو چاہے فزیکلی دفن نہ ہو. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا، مرا اور زمین میں دفن ہو گیا، اب ایک اور انسان مثلا مرا کسی بھی وجہ سے ڈیڈ باڈی کو آگ لگ گئی، اچھا اب یہ زمین میں دفن ہوگا کیا؟ نہیں. تو کیا اس کی شب اول قبر نہیں ہوگی؟ شب اول قبر تو اس کی بھی ہوگی. بھائی آپ مثال کے طور پر کوئی جا رہے تھے جہاز کے سفر کے اوپر، اب تو خیر اسٹوریج وغیرہ موجود ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ ایک آدمی کوئی مر گیا، پانی کے جہاز میں جا رہے ہیں، 2 مہینے کا سفر ہے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے. اچھا جس کو انہوں نے پانی میں ڈال دیا تھا، اس کی شب اول قبر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شب اول قبر کا خود قبر سے، گریو سے کوئی تعلق نہیں ہے. دفن ہو یا نہ ہو آئے گی. اور میں مثالیں دی ہیں کیا کہتے ہیں، بھائی کسی کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگ گئی، کسی کو پانی میں ڈال دیا، کسی بھی وجہ سے نعوذ باللہ اسے قبر نصیب نہیں ہوئی زمین کے اندر، تو کیا شب اول قبر نہیں آئے گی؟ فرشتے سامنے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، سب ہوگا. اب جناب شب اول قبر کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے، تمام اسلامی فرقوں کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ بھئی فرشتے آتے ہیں اور کچھ سوال کرتے ہیں. فرشتے آتے ہیں کچھ سوال کرتے ہیں. آپ نے اہل سنت کی علماء کی بھی کلپس وغیرہ دیکھی ہوں گی، کچھ سوال وہ بتاتے ہیں، کچھ سوال ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ہوں گے. ممکن ہے ہم چند سوال کہیں، وہ 1-2 کچھ اور کہیں. یہ سب معتقد ہیں کہ شب اول قبر میں سوال ہوں گے، فرشتے سوال کریں گے. اگر جن سوالوں پر اتفاق رائے ہے کہ یقیناً یہ تو ہوں گے، وہ یہ ہے کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، مثلاً تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم کہیں گے قبلہ بھی ہے، امام سے سوال ہوگا، یہ سب سوال ہوں گے. अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ इस सवाल के सिलसिले में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद जो ज़ाहिर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है वो सब लोग वो हैं जो किसी ना किसी एजुकेशनल सिस्टम से गुजर के आए हैं, सही। आपने और हमने सबने इम्तिहान दिए हैं और अगर आपने टीचिंग की है तो आपने इम्तिहान लिए भी होंगे। ये जो शबे अव्वल कब्र सवाल होंगे ये पता है या नहीं पता? पता है, जवाब पता है या नहीं पता? तो फिर ये इम्तिहान क्या मजाक है ना उस दिन का, कैसा इम्तिहान? सवाल भी पता है जवाब भी पता है तो फिर ये इम्तिहान है क्यों? एक दफा मैंने स्कूल में एक दफा बच्चों के सामने, बहुत पहले की बात है, एक दफा कैसी बात कही तो फिर हत्ता बच्चे तो ये तजवीज देने लगे कि मसलन सबके जवाब लिख के कफन में रखते तो भाई फरिश्ते आए तो मसला ना हो, खुदा ना करे किसी की मेमोरी ना रहे तो कम से कम कागज पे तो देख लेगा तो भी जवाब ये था तो बोलते। तो आप मिसाल के तौर पर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई दुनिया में जितने मुसलमान मरे सबके कफन में वो कागज रख दे, मसला हल हो गया? मसला नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि फिर क्या हुआ? सवाल भी पता है जवाब भी पता है और मुश्किल ये है कि हर फिर का कहना है कि होगा। अगर थोड़ा सा भी लचक होती तो हम ये कहते कि भाई ये शायद लोगों ने बाद में डाल दिया कि होगा, हर फिर का कहना है कि नहीं होगा। अच्छा अब मुश्किल यहाँ पे क्या हो गई जिसकी मैंने आपको मिसाल देनी थी, वो ये कि हमें दीन के बारे में कुछ चीजें पता है, तफसील नहीं पता, सही से नहीं पता। अब पता है कि सवाल होगा लेकिन मुश्किल ये कि इसको कौन हल करेगा। अब देखिए मैं दो तीन जुमलों में इसको हल करने की कोशिश करता हूँ और इससे भी अमल की एक बात निकल आएगी। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम लोग जो बातें अपनी जबान से कहते हैं उसमें कुछ वो होती हैं जो हम अमल भी करते हैं और कुछ वो होती हैं जो अमल नहीं हो रहे होते, सिर्फ जबान से कह रहे होते। ये जो शब अव्वल कब्र है ये जबान से जवाब देने का है ही नहीं, ये जबान से जवाब देने का नहीं। तो ये क्या है? ये देखा जाएगा कि आपने जो 60 साल में किया था, जितनी भी आपकी उम्र थी उसमें किया था, उससे जवाब बनेगा क्या, वो आपका जवाब काउंट होगा। अब मिसाल दे देता हूं, जनाबे आजी आइए, तुम्हारा रब कौन है? जाहिर है कि अल्लाह है। अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बैठे हैं सबसे पूछें भाई तुम्हारा रब कौन है तो क्या कहेंगे जवाब? खुदा है, जाहिर है, कौन कहेगा, कोई शर्क थोड़ी करेगा। अच्छा अब रब किसे कहते हैं? रब उसे कहते हैं जो पालता है, जिसके बारे में इंसान सोचता है कि ये मुझे पाल रहा है, सही है। अच्छा हम लोग जिसको वाकई समझते हैं कि हमें पाल रहा है वो कौन है? मिसाल मसलन फर्स्ट फरमाइए मेरा बिजनेस है और उस बिजनेस से मेरी जिंदगी चल रही है और खुदा ना करे किसी भी वजह से वो बिजनेस खत्म हो जाए तो मुझे फौरन क्या खतरा लगेगा? अब क्या होगा? सही, किसी की जॉब लगी हुई है और वो जॉब चली जाती है और वो इंतहाई परेशान हो जाता है कि भाई जॉब चली गई अब होगा क्या? तो भाई तुम्हें खतरा क्यों है? खतरा यह है कि भाई अभी तो जो भी महीने के खर्चे होते थे वो जॉब से पैसे आते थे, मैं उसको दे देता था, अब वो खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो अगर मैं उससे पूछूं कि भाई तुम्हारा रब कौन है, तो ये जो इतना परेशान हो रहा है कि ये भूल गया कि रब अल्लाह है। थोड़ी देर से इसके दिमाग से निकल गया है कि रब अल्लाह है, जॉब खत्म हुई है, रब खत्म नहीं हुआ, बिजनेस खत्म हुआ, रब खत्म नहीं हुआ। अब देखिए मैं बहुत दफा ये जुमला अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर किसी को अगर ये कह दो कि तुम्हारा वीजा कैंसिल होने वाला है, रातों की नींद उड़ जाएगी उस बेचारे, चेहरे का रंग फक हो जाएगा उसका, और वो ऐसा तिल मिलाएगा कहेगा कि मौलाना बददुआएं मत दें, अल्लाह का वास्ता बुरी बातें मत करें। अच्छा मैं उससे कहूँगा कि भाई ये जो तुम्हें यहाँ पे रिस्क मिल रहा है ये नेशनैलिटी दे रही है या खुदा दे रहा है? खुदा दे रहा है ना, कहीं और नहीं दे सकता, कहीं और भी तो दे सकता है, इसे क्यों नहीं सोचते? अच्छा आप तसव्वुर फरमाइए, अगर मैं ऐसा हूं कि मैंने अपने दिमाग में गोया ठान लिया है कि नहीं भाई ये जॉब दे रही है, ये बिजनेस दे रहा है, ये मुल्क दे रहा है, कल मैं मर गया और फरिश्तों ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन था, तो मेरी जबान से खुदा क्यों निकले? मैंने थ्योरेटिकली माना ही नहीं था, मेरी जो दिमाग में थ्योरी चल रही थी उसमें बिजनेस था, उसमें जॉब थी। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह है, लेकिन मेरा अमल क्या कहवा रहा है? खुदा ने करना उज़ुबिल्लाह, इंशाल्लाह अमल भी अच्छा होगा, अमल भी कहवाएगा कि खुदा है। ठीक है, अगर किसी का अमल सही नहीं हुआ इसकी जबान से अल्लाह नहीं निकलेगा, इसकी जबान से नहीं निकलेगा। अब ये जो हमारे पास इतनी रिवायतें मौजूद है ना कि वो फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा इमाम कौन है और उसने कहा कि मौला का नाम लिया और सारे मसले हल, वल्लाह सही है, वल्लाह सही है। सिर्फ एक मुश्किल है, इमाम होता कौन है और कौन कहेगा कि मेरा इमाम अली है? दुरूद भेजेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम अरबी में कहते हैं, हम तो ज़ाहिर इमाम मासूम के तौर पे इमाम कहते हैं, हमारे नज़दीक इमामत एक मकाम है, एक मनसब है, लेकिन अरबी लुगत में अगर बात की जाए इमाम कहते हैं लीडर को, रहनुमा को। और जब हम कहते हैं इमाम मासूम तो एक ऐसा रहनुमा जिसको खुदा ने नस्ब किया है और उसकी इताअत उससे ज्यादा वाजिब है जो कायनात में किसी भी और की इताअत वाजिब हो। यानी मैं अपने ऊपर वो इख्तियार नहीं रखता जो इमाम मासूम रखते हैं, मेरे वालदैन मेरे ऊपर वो इख्तियार नहीं रखते जो इमाम मासूम रखते हैं, उनके किसी भी हुक्म की इताअत और फरमा बदारी में न चून न चरा, कैसे और क्यों, इन दोनों की कोई गुंजाइश नहीं होती। सही, अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, कितने लोग प्रैक्टिकली अमीर मोमिन को इमाम मानते? क्या मतलब, यानी जहां अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया कि ये है ये करो, तो ना उसने चूं कहना है ना चना कहना है, कैसे और क्यों ये सब नहीं कहना है उसने। जो इमाम ने कह दिया उसने कहा बिल्कुल सही है यही होगा। अभी तो एक मुश्किल पड़ी हुई है, मुझे कि सुबह ही सुबह फजर के नमाज के अंदर एक मसला खड़ा हुआ है कि भाई वो जो इमामत के मानने वाले हैं उनको बिलाखिर फजर अमीरुल मोमिनीन की सुन्नत में हुक्म में वाजिब हुई है या नहीं हुई है? अगर हुई है तो ये इमामत के मानने वाला कजा कैसे कर रहा है? अब मुझे आप बताइएगा कि ये शबे अव्वल खबर कहना चाह रहा है कि फरिश्ते पूछेंगे वो कौन था जिसका हुक्म तो बिना चूनो चरा मानते थे, और ये क्या कहना चाह रहा है? अमीरुल मोमिनीन का नाम आसान है, इसलिए कहा था कि अमीर मोमिनीन के रास्ते पे चलना शमशीर के ऊपर चलने से ज्यादा सख्त है। तो आपको जो मसलन शबे अव्वल कब्र सवाल था, बहुत सादी बात थी कि भाई पूछेंगे रब कौन है, तुमने कहना है जवाब में अल्लाह, और मिसाल के तौर पर तुमसे कहेंगे कि किताब कौन सी है, अच्छा किताब किसे कहते हैं? किताब उस रेफरेंस को कहते हैं जब इंसान डिस्प्यूट में पढ़ता है तो उस रेफरेंस से कॉन्टेक्ट करता है, कंसल्ट करता है, जो वो रेफरेंस कहे उसको मान लेता है, इसको कहते हैं किताब। मुझे बताइएगा कितने लोगों का रेफरेंस कुरान करीम है? शादी ब्याह होती है तो हम ये देखते हैं फैमिली में क्या होता है, तो शादी ब्याह में किताब हो गई फैमिली। बच्चे कोई कैरियर चूज करने लगता है तो देखते हैं आजकल माशरे में किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, इस मामले में किताब हो गई सोसाइटी। किताब है किसकी? तो वो जो शबे अव्वल कब्र के सवाल इतने आसान लग रहे थे, अब आपने देखा नहीं भाई ये इतने आसान नहीं है कि आप जैसे ही कागज अपने कफन के अंदर मामला हल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हल होता तो फिर पूछता ही नहीं होता। तो अब मिसाल आप आखिर में इस सिलसिले में भाई वो जो आपने जवाब देना है वो कब लिख रहे हैं आप? कबली किंग या ये जो कुछ आप जिंदगी गुजार रहे हैं ये एक्चुअली आप शबे अव्वल कब्र का जवाब लिख रहे हैं। यही जवाब वहां पर जवाब में कहा जाएगा जो अभी आप लिख रहे हैं। तो अब देखिए कितना सादा सा मामला था लेकिन थोड़ा सा आप गहराई में गए देखिए मामला पेचीदा हो गया। दीन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बदकिस्मती हमारे साथ ये हो रही है कि हम में से अक्सर को ये एहसास है कि दीन में शायद कुछ बचा ही नहीं है जो हमें ना पता चला हो ना हमने किया हो। मैं एक वाक्य अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान ही में मैं एक शहर में गया, वहां पर एक साहिबा ने मुझसे टाइम लिया मिलने के लिए कि भाई कुछ बात करनी है। उन्होंने मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना देखिए हमने नमाजें पढ़ ली, हमने रोजे भी रखते हैं, हमने हज भी कर लिया, हजदारी भी करते हैं और ज्यारत भी जाते हैं, आप ये बताइए दीन में कुछ और बचा है क्या? तो मेरा दिल यही चाह रहा था कि मैं उनसे कहूँ देखो बीबी इसका मतलब ये है कि आपको इस्लाम से अभी अलिफ पता नहीं चला, अभी आपको कुछ पता नहीं चला। दीन के बारे में हम लोगों की खाम ख्याली इतनी है। अच्छा जब खाम ख्याली इस जगह के ऊपर देखिए शबे अव्वल कब्र का मामला आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ सोसाइटी में चले जाइए लोगों से पूछना शुरू कर दीजिए कितने लोग हैं जो आपको बता पाएंगे कि हाँ इस पैराडॉक्स का हल क्या है। सवाल भी पता है जवाब भी पता है और होना भी है, कितने लोग आप उसका हल बता पाएंगे? तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए दीन के बारे में हो क्या रहा है और अब हम किस दीन के बारे में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उस दीन के बारे में जो अहले बैत अत्तहार सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन हमें देना चाह रहे थे। दुरूद भेजो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खास मुश्किल है। वो खास मुश्किल क्या है भाई, जो 1400 साल में हुकूमतें थी वो उनके हामियों की थी या मुखालिफों की थी? मुखालिफों की। तो ये जो मुखालिफ लोग थे जो हमेशा हुकूमत पे थे इन्होंने अहले बैत का दीन लोगों को बताया होगा क्या? नहीं, उन्होंने हमेशा उल्टा किया होगा ताकि अहले बैत को आइसोलेशन में डाल दें। तो अब सवाल ये है कि जो अहले बैत हमें सिखाना चाह रहे थे वो हमें पता चल गया? अगर पता चल जाए तो जिंदगी पे क्या असर होना चाहिए ये भी आपको मुझे बताओ। तो मुझे 10 दिन में थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी है कि भाई वो जो वाकई हमें देना चाह रहे हैं वो क्या है, और अगर मैं और आप चाहें कि उसके ऊपर अमल करें तो ये अमल होगा कैसे? अच्छा मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई इस मौजू पर हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, जब मरेंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे। तो मैं उससे कहूंगा कि देखो सबसे बड़ा मसला मुझे ये नहीं लगा हुआ कि तुम मरोगे तो देखोगे या नहीं देखो, मरोगे तो मेरे किसी काम के नहीं हो जाओगे खुद ही देख लेना। मुझे तो एक और मसला लगा हुआ है वो ये कि हमें इंतजार करना है अपने इमाम का, और इमाम कब तशरीफ लाएंगे? जब आवान अंसार होंगे। ये आवान अंसार वो होंगे जो उनके अजदाद के दीन को जानते हैं और अमल करते हैं या वो हैं जो उनके दीन से गाफिल हैं? ये वो होंगे जो दीन पे अमल करते होंगे। उनको पता होगा कि उनके इमाम के अजदाद ने जो दीन दिया था तालीमात दी थी वो तालीमात थी क्या, उनके ऊपर अमल करते होंगे। अच्छा अगर खुदा ना करे सब यही कहते रहे कि आप छोड़ दीजिए मौलाना हम कबे अव्वल कब्र खुद निपटा लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ एक मुश्किल है फिर वो इमाम मजलूम गैबत से आएंगे कैसे, ये जहूर होगा कैसे? तो जहूर होने के लिए क्या चाहिए? जहूर होने के लिए चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हों जो उनके अजदाद के दीन को जानते हों, उस दीन पर अमल करते हों, इतना उनके अंदर इस्लाम और अहले बैत के मकतब की तालीमात खालिस हो चुकी हों कि फिर इमाम की तशरीफ आवरी मुमकिन हो जाए। असल मुश्किल यहां पर है। अच्छा अगर खुदा न करे नाऊज़ बिल्लाह ताला ऐसा नहीं हुआ तो फिर अजदाद मोहतरम बहुत बड़ी मुश्किल है। आपको पता है कि सैकड़ों साल गुजर चुके हैं और खुदा ना करे नाउज़ुबिल्लाह ताला अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर और भी लंबा हो जाएगा मामला। लेकिन मुझे एक बात की पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह मामला लंबा नहीं, इंशाअल्लाह लंबा नहीं, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम ऐसे लोगों को तैयार कर देगा जिनके नतीजे में आपकी तशरीफ आवरी होगी। और मेरा अंदरूनी यकीन है, अंदर का यकीन है कि ये जमाना ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। सिर्फ एक मुश्किल है हम और आप कहां होंगे, हम और आप उस लश्कर में होंगे या नहीं होंगे, मुश्किल यहां पर। अब आप तसव्वुर फरमाइए आप यहां तशरीफ फरमाए हम यहां बैठे हुए हैं अगर हम में से किसी को बहुत बहुत ही थ्योरेटिकल बात कह रहा हूं, बहुत ही थ्योरेटिकल, अगर हम में से किसी को ये इल्म हो कि कौन वहां पर होगा लश्कर में और कौन नहीं होगा, और उसको पता चल जाए कि ये जो मौलाना इतनी बातें कर रहे हैं ना ये नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? वो मेरे पास आकर कहेगा कि अगर देखिए मौलाना आप बहुत अच्छे आदमी हैं, सारी बातें हैं, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है, वो ये कि आप वहां नहीं। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उससे ये कहूं कि देखो जब होगा तो देखा जाएगा, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूं? नहीं। अगर खुदा ना करे मुझे ये खबर मिल जाए तो मुझे चाहिए मैं आज रात सारी मजलिसें बंद करूं और उससे पूछूं कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि मुझे इमाम के लश्कर में पहुंचने के लिए करना क्या है, क्यों टॉप प्रायोरिटी ये है और कोई चीज प्रायोरिटी नहीं है, मेरे बच्चे क्या बनेंगे, उनका कैरियर क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी स्पीचेस का क्या होगा, मेरे स्केड्यूल, मेरे कमिटमेंट, इनमें से कोई प्रायोरिटी नहीं है। टॉप प्रायोरिटी क्या है? टॉप प्रायोरिटी ये कि मैं इमाम का साथ दूंगा या नहीं दूंगा, ये टॉप प्रायोरिटी है, यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं। आप अपनी जिंदगी के सारे काम करते रहिए लेकिन एक बात पे अपने आप को चेक करते रहिए, आप इमाम के लश्कर में होंगे या नहीं होंगे। और मैं एक और बात भी अर्ज करता चलूं, ये जो हम सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं ना फ्यूचर का, होंगे या नहीं होंगे, ये सीगा सही नहीं है। अभी अभी है या नहीं है ये सही है। फ्यूचर क्यों? अभी अभी आप हैं या नहीं है क्यों? भाई इमाम की तशरीफ आवरी से पहले मर गया फिर क्या होगा? अभी चेक करो। अच्छा कैसे चेक करूं? देखिए बस जल्दी से खत्म करने के लिए एक दो जुमले और इस मौजूद पर करूं, चेक कैसे करें? बात मुझे ऐसी कहनी आप कर सकें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप मैं आ चुका हूँ बिहार बार पढ़ के आएगा फिर करिए, तो क्या पता वो पढ़ के नहीं आएगा, उसे तो काफी पढ़ के आइएगा, तो किसने पढ़ी है? प्रैक्टिकल बातें करें, प्रैक्टिकल बातें। अभी देखिए एक रात के लिए मैं आपको कहता हूँ, आप ये काम आपसे अर्ज करता हूँ, आप इसको करके देखिएगा और फिर आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेंगी, अंदाजा होगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। हमारे दोस्तों ने बताया कि आज काफी ज्यादा प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पर और उसमें मोमिनीन ने काफी शिरकत की है, हमें बता दिया था कि वो लोग काफी थके हुए भी होंगे, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आप लोगों की थकावट को दूर फरमाएगा, इंशाअल्लाह आपकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक बार फिर आप अपनी थकावट को दूर करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत देर और लगाऊंगा, मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, आप अपनी थकावट को दूर करने के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आलिह काबिल हुआ या नहीं हुआ, ये सोचने बस। क्योंकि अगर नहीं है मतलब बहुत खराब है, मामला बहुत खराब। मुझे मैं आपका वक्त नहीं लेना चाह रहा जिसमें आपको बताऊं कि और तफसील कैसे ढूंढे। देखिए एक सादा सी तफसील, अगर मैं आपसे यह अर्ज करूं कि अभी इमाम तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, उनका एक लश्कर होगा और उस लश्कर में एक आदमी झूठ भी बहुत बोलता है, आप कबूल करेंगे? आपका ध्यान मानेगा कि जिस लश्कर का 1200 1250 साल इंतजार हुआ, जिस लश्कर ने जमीन और आसमान के अंदर अदल फैलाना है, उस लश्कर का सिपाही झूठा हो, मानेगा आपका ध्यान? नहीं मानेगा। बस फिर आप यही सोचते रहिए कि मैं जो कुछ भी हूं, अच्छा आप मुझे नहीं जानते, मेरे अंदर क्या गुजर रही है आपको क्या पता, अच्छा आपके अंदर क्या गुजरी मुझे क्या पता, मैं कोई वो थोड़ी हूँ जो बर्जा की आंखें देख ले कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, आप खुद नहीं है वो, मैं भी नहीं, आप अपने आप को तो पहचानते हैं ना। अपने आप से बिल्कुल मुनसिफाना एक सवाल पूछ लीजिए कि जो भी खूबियां मेरे अंदर हैं, जो भी खामियां मेरे अंदर हैं, इनके होते हुए इमाम का लश्कर मुझे कबूल कर लेगा, बस ये सवाल है। और मैं जो 8-10 दिन में आपके सामने अर्ज करना है, आज का दिन तो गुजर गया, 9 दिन बाकी, वो क्या करना है, मुझे अहले बैत की वो तालीमात बतानी है जिसके नतीजे में आप उस लश्कर में आ सके, मुझे वो आपकी खिदमत में अर्ज करना है। और कोशिश ये करूंगा कि अमलन हो ऐसी बातें हो जिसका आपकी अमली जिंदगी में फायदा बने, और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में मैं और आप इमाम की उस नुसरत की सआदत को हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। और इस काम से इंशाअल्लाह आपको भी ये फायदा नसीब हो और हमें भी ये फायदा नसीब हो कि हम अहले बैत का क़ुर्ब हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद और ये काम बहुत तेजी से खराब हो सकते हैं अगर हमारी नीयत खालिस ना हो, ये चीजें खराब हो जाती हैं। काम करना आसान होता है, नीयत सही रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, नियत खालिस रखना बहुत मुश्किल है। तो नियतों का खालिस होना बहुत जरूरी है, वरना काम खराब हो जाता है, उनका असर नहीं होता। तो नियत भी सही रखनी है, बात भी सही कहनी है, अमल भी करना है, वरना खुदा कहता है क्यों ऐसी बात कहते हो जो अमल नहीं करते। सब सब सब, सब चीजें होनी चाहिए। हम तो जाहिर है हम लोग कमजोर इंसान हैं, हम लोग ये सब काम कैसे करेंगे। इस खातिर हम कहते हैं अहले बैत से तवज्जुह करो, ये काम हम इतना आसानी से नहीं कर सकते, उनकी तवस्सुल की जरूरत होगी। तवस्सुल के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, जब आपका दिल उनकी तरफ जुड़ गया हो, बेहतरीन वक्त तवस्सुल का वो होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन परवरदिगार आलम ने ये जो आपको फजीलत दी है ना कि हम इमाम हुसैन के गम में रोते हैं, ये बड़ी फजीलत है। सच्चे दिल से जो रोता है तो वो उस वक्त उसका दिल इमाम हुसैन से जुड़ जाता है, सैयदुल शुहदा के गम पे रो रहा होता है, भाई ये गम इसके ऊपर तो नहीं आया, नहीं आया है, लेकिन उसका वजूद इमाम के वजूद से इतना नजदीक आ जाता है कि जो गम इमाम को आता है इसको लगता है मेरे ऊपर आया है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बड़ी अहम बात है। हाँ हमारा फासला 1400 साल का होता है उनके वजूद है मुकद्दस जमानी और जिस्मानी वजूद से, 1400 साल का फासला, लेकिन दिल नजदीक होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मामूलन कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो पहला दिन होता है उसमें कुछ ना कुछ मसाहिब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मदयून तो हम उन्हीं के हैं, मकरूस तो हम उन्हीं के। मसाइब की अगर सही इब्तदा कोई देखे ना तो मसाइब की सही इब्तदा सैयदा के दरवाजे से होगी। जितने भी मसाइब गुजरे हैं उन मसाइब की इब्तदा वहां से। और जैसे मुझे किसी ने बताया कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई दोस्त हैं जिनका 9 साल बिल्कुल बच्चा दुनिया से रुखसत हुआ है, तो ये भी वो गम है जो अहले बहत ने पहले सहा है। हर गम दुनिया का उसके सामने कम है जो अहले बहत ने सह लिया। और कितना अजीब मौका है, बस एक दो रिवायत अगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मौलाना मोमिन एक जगह से गुजर रहे थे, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे और वो अपनी मुश्किलात के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई कह रहा था मेरी जिंदगी में ये मुश्किल आई, किसी ने कहा मेरी जिंदगी में वो मुश्किल आई। जब वो मुश्किलात के ऊपर गुफ्तगू कर चुके तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आप बताइए कि आपकी जिंदगी में मुश्किल कौन सी आई। तो अमीरुल मोमिनीन ने न जंगे बदर का जिक्र किया, न जंगे उहद का जिक्र किया, न जंगे खैबर, किसी जंग का कोई तस्करा नहीं किया। जो मुश्किलात खुद गुजारी उन सब का किसी का तस्करा नहीं किया, बस एक जुमला उस रिवायत में लिखा हुआ था और उसमें लिखा था कि इमाम ने इधर उधर देखा और देखने के बाद ये कहा कि कोई तुम्हारी जौजा को मारे और तुम कुछ ना कर सको। बड़ा अजीब जुमला है बाप रे, और अगर इस जुमले की आप तशरीह करें तो फिर ये जुमला बहुत बड़ा जुमला बन जाएगा। कोई बिनते रसूल अल्लाह के ऊपर दस्त दरा नहीं है, अल्लाह یعنی وہ گھر جس نے ہمیشہ دیا تھا, اللہ کے رسول کا ایک دستور تھا, اگر کوئی مانگنے آتا تھا اور اللہ کے رسول نہ دے پاتے تھے تو وہ سیدہ کے دروازے پر بھیجتے تھے اور کہتے تھے اب میں ایسے دروازے پر بھیج رہا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا. لیکن ایک عجیب معاملہ ہوا کہ رسول اللہ جس دروازے کے سامنے 6 مہینے تک روزانہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ, ابھی رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں, دنیا جمع ہو گئی اس دروازے کے اوپر آگ لگانے کے لیے, بنت رسول اللہ کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. دو جملے بڑے عجیب جملے ہیں. ایک جملہ استاد فاطمی نیا نے فرمایا ہے, بڑا ہی عجیب جملہ ہے جو عارف آدمی استاد فاطمی نیا نے سیدہ کے مسائل پہ ایک جملہ کہا. میں نے کئی دوستوں سے پوچھا کہ بھئی تم نے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا. انہوں نے کہا جب بیوی کو اس لعین نے ضرب لگائی تو بیوی نے پہلا جملہ فرمایا یا مہدی ادرکنی. بیوی نے وقت کے امام کو پکارا, گویا بیوی ہزاروں سال کا صدیوں کا فاصلہ طے کر کے دیکھ رہی ہے کہ کون ہے میرا بیٹا جو میرا حق دلوائے گا. وقت کے باپ کو پرسا دے دیا ان کی جنت مالدہ کا. بیوی نے باپ کو پکارا تھا یا مہدی ادرک نہیں. اور دوسرا جملہ استاد بہاؤدینی نے, آیت اللہ بہاؤدینی نے ارشاد فرمایا. میں یہ جملہ ان کے پاس خود گیا, میں نے پوچھا آقا آپ نے مسائب میں جملہ پڑھا, میں نے سنا ہے, کیا یہ مسائب میں اپنے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو سناؤں؟ انہوں نے خود کہا سناؤں. میں نے کہا آپ سند کی گواہی آپ دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میری گواہی کے اوپر سناؤں. ارے تو بڑا عجیب جملہ ہے. فرمایا ایک طرف سے اس لعین نے تماچا مارا, دوسری طرف سے سیدہ کا نقصان دیوار سے ٹکرا ہے. مظلوم میں دو دفعہ پچھلی ہے. ابھی بھی یہ سارے مسائل چھل گئی تھی, ابھی بھی نے ان تمام مسائل کو برداشت کیا. ان تمام مسائل کے عالم میں جب ان لائنوں نے امیر المومنین کو گھسیٹا, سیدہ اس ضعف کے عالم میں, اس کمزوری کے عالم میں امیر المومنین کا ہاتھ تھام لی ہے. ان لائنوں نے اتنے کوڑے مارے سیدہ کے ہاتھ کے اوپر.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
دوسرے آئے کریمہ امام وقت کے لیے ہے, وہ تشریف لائیں گے, ان ظالموں کو بتائیں گے کہ تم نے کیا ظلم کیا. خدایا امام مظلوم کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, جن ظالموں نے ظلم انجام دیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جو ان ظلم کو سن کر خاموش رہے بی بی کی نصرت سے دوری کی, خدایا ان کے بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے چاہنے والے جو اس وقت سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا میں موجود ہیں, کچھ لوگ دنیا میں مشتاق ہیں, ان تمام کی زیارتوں کو, عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو زیارات کی متمنی ہیں ان سب کو زیارات کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے امام مظلوم کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اے خدایا تجھ سے التجا کرتے ہیں, خدایا تو نے بیوی کے غم میں آنسو نصیب کیے ہیں, خدایا تو نے سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہے, ان امام وقت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.